पाठ 24 अध्याय 16 और 17।
पिछले सप्ताह हमने लैव्य व्यवस्था अध्याय 16 को देखा था, जिसमें प्रायश्चित दिवस योम किप्पुर के विषय को शामिल किया गया था। मैं इस सप्ताह इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि हम उच्च पवित्र दिनों की शुरुआत से कुछ ही दिन दूर हैं और फिर हम अध्याय 17 शुरू करेंगे। योम किप्पुर की आवश्यकता को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, कानून ने किसी भी चीज को पूर्ण नहीं बनाया। व्यवस्था हमें परमेश्वर के नियमों और आदेशों के बारे में सिखाती है, उसने क्या निर्धारित किया है कि बुराई और भलाई क्या है और हमें उसके साथ शांति स्थापित करने की कितनी आवश्यकता है। व्यवस्था हमारे पाप और हर व्यक्ति के भीतर मौजूद दुष्ट प्रवृत्ति पर से पर्दा हटाती है और इसे पीड़ित की त्वचा पर थे की तरह उजागर करती है। व्यवस्था हमें धार्मिक जीवन जीने का मार्ग और उससे मिलने वाली आशीर्ष देती है, और यह हमें विकल्प के बारे में चेतावनी देती है, अवज्ञा, विद्रोह और व्यवस्था के श्रापों के परिणाम। एक दिशा चुनने से जीवन मिलता है, दूसरी दिशा से मृत्यु। फिर भी व्यवस्था ने औचित्य का प्रावधान नहीं किया। यह सभी पापों के लिए उपाय नहीं प्रदान करता, केवल कुछ प्रकार के पापों के लिए। यह सिद्धता भी नहीं प्रदान करता, जिसे यीशु ने कहा कि सभी के लिए आवश्यक है जो बचाए जाएंगे, मत्ती 5:48। इसलिए सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मैं इसे पुनः कहना चाहता हूं, व्यवस्था सिद्ध थी, परंतु इसका उद्देश्य सिद्ध करना नहीं था, यह तो यीशु का मिशन था।
इसलिए व्यवस्था की वाचा में मूसा के रूप में कोई सिद्ध मध्यस्थ नहीं था, न ही कोई सिद्ध पुरोहिती थी, न ही पाप को ढकने के लिए बलिदान का कोई सिद्ध प्रायश्चित था। इसके बजाय अनुष्ठान, बलिदान और शुद्धिकरण दिन प्रतिदिन, साल दर साल चलते रहना था। फिर भी पाप और अशुद्धता बहुत बढ़ गई, इतनी कि लोगों में अधर्म बढ़ता गया, और अशुद्धता ने परमेश्वर के तंबू के साथ साथ सभी पवित्र अनुष्ठान उपकरणों, यहां तक कि पीतल की वेदी को भी गंदा कर दिया। हर साल एक बार उच्च पुजारी को पवित्र अभयारण्य, परम पवित्र स्थान के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करके एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ता था, और वहां वह उस स्थान और उसके सामान को साफ करने के बारे में सोचता था। इस वार्षिक नियुक्त समय को योम किप्पुर कहा जाता था, और लोगों के बीच इसका इतना महत्व था कि इसे महान दिन या यहां तक कि दिन का उपनाम भी मिला।
योम किप्पुर बाइबल इब्रानी धार्मिक चक्र कैलेंडर के 7वें महीने के 10वें दिन होता है। यहां तक कि महीने और दिन की संख्या भी महत्वपूर्ण है। 7वां महीना सप्त महीना है। 7 बाइबल के पर्व 7 महीनों की अवधि में मनाए जाते हैं। पहला महीना हमें फसह, अखमीरी रोटी और प्रथम फल लाता है। 7वां महीना हमें रोश हशनाह, यहूदी नववर्ष लाता है। फिर 10 दिन बाद योम किप्पुर, फिर 5 दिन बाद सुकोट, जो 7 धार्मिक त्योहारों के सप्त चक्र की परिणति है।
योम किप्पुर के दिन की संख्या 10 है, महीने का 10वां दिन। 10 बाइबल में पूर्णता की संख्या है। पूर्णता का अर्थ है पूर्णता, न कि किसी चीज का समाप्त होना। यह राष्ट्रीय सफाई, पूरी मंडली की सफाई और उस स्थान की सफाई जहां परमेश्वर पृथ्वी पर रहता था, बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर अशुद्धता बहुत बढ़ गई तो प्रभु अपने लोगों के बीच नहीं रह सकता था और उसकी उपस्थिति को छोड़ना होगा ताकि उसकी अकथनीय पवित्रता की रक्षा की जा सके। जैसा कि मैंने आपको कई मौकों पर सिखाया है, केवल शुद्ध लोग ही परमेश्वर के पास जा सकते हैं, केवल शुद्ध लोग ही पवित्रता के पात्र हैं। यदि इसराइल को प्रभु के सामने खड़े होने की कोई उम्मीद थी तो उसे योम किप्पुर के अनुष्ठानों को पूरा करना था।
हालांकि किसी तरह सदियों से रब्बियों ने योम किप्पुर के उद्देश्य को तौर नामरोर ना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा परिवर्तन 70 ईस्वी में मंदिर के अंतिम बार नष्ट होने के बाद हुआ। यह राष्ट्रीय घटना से व्यक्तिगत घटना में बदल गई। यह शुद्धिकरण के दिन से न्याय के दिन में बदल गया। रब्बी अब सिखाते हैं कि प्रायश्चित के दिन अगले वर्ष के लिए उपासक का भाग्य सील कर दिया जाता है, उसे या तो क्षमा कर दिया जाता है और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, या उसे क्षमा नहीं किया जाता है और उसका नाम हटा दिया जाता है। इसलिए योम किप्पुर, रोश हशनाह,
यहूदी नव वर्ष से शुरू से पहले के 10 दिनों के दौरान रब्बी यह भी सिखाते हैं कि इज़राइल के लोगों को विशेष रूप से पश्चातापी होना चाहिए, उन्हें अपने पापों का ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहिए। यह बहुत संयम का समय होता है। मूलतः धर्मशास्त्र के अनुसार यद्यपि योम किप्पुर वास्तव में एक पवित्र समय था, फिर भी इसे खुशी के साथ मनाया जाता था, क्योंकि लोग जानते थे कि यदि महायाजक अपना कार्य करेगा तो इज़राइल के सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। एक प्रथा विकसित हुई यहां तक कि यीशु के युग में भी, जहां यहूदी युवतियां विवाह योग्य अविवाहित लड़कियां सफेद वस्त्र पहनती थीं और अंगूर के बागों में जाती थीं, जहां वे एक साथ नृत्य करती थीं। अविवाहित पुरुष भी भावी दुल्हन को खोजने की उम्मीद में वहां पहुंचते थे।
लेव्य व्यवस्था 16 में निर्देश दिया गया है कि सभी उपासकों को योम किप्पुर के समय खुद को पीरा पहुंचाना है। इसका मतलब है उपवास करना और सेक्स या शराब पीने जैसी आनंददायक चीजों से दूर रहना। इसका उद्देश्य लोगों को ईश्वर के सामने विनम्र बनाना था, ताकि वे जीवन निर्माता और पालनकर्ता के रूप में उनकी जरूरत को पहचान सकें।
समारोह की शुरुआत महायाजक द्वारा अपने लिए शुद्धिकरण का बलिदान चढ़ाने और फिर लोगों के लिए एक बलिदान चढ़ाने से हुई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, व्यवस्था का पुजारित्व एक परिपूर्ण पुजारित्व नहीं था, क्योंकि इसमें अपूर्ण लोगों को नियुक्त किया गया था। यहां तक कि महायाजक को भी पापों के लिए प्रायश्चित और शुद्धिकरण की आवश्यकता थी, अन्यथा वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए बहुत अपवित्र हो जाएगा। इस दिन अन्य सभी दिनों से अलग वह विशेष सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसके सुनहरे वस्त्र, जैसा कि वे जाने जाते थे, जो ड्यूटी पर रहते हुए उसका सामान्य महायाजकीय परिधान था, उसे वर्ष में इस एक दिन अलग रखा जाता था। सफेद रंग प्रभु के सामने शुद्धता का प्रतीक था। उस दिन कई बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन शायद सबसे अनोखा और शानदार बलि का बकरा अनुष्ठान था। 2 बकरे चुने जाते थे और फिर लॉट से एक को बलि चढ़ाने और पीतल की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए चुना जाता था, और दूसरे को जीवित प्रतीकात्मक रूप से पिछले साल के इज़राइल राष्ट्र के सभी पाप और अशुद्धता से लदे हुए जूडियन जंगल में भेज दिया जाता था। पुरोहिताई के लिए बलिदान एक परिपक्व बैल था, जिस पर महायाजक अपना बैल रखता था। हाथों सेमिचा से पुरोहिताई के सारे अपराध और पाप स्वयं सहित को इस निर्दोष विकल्प पर स्थानांतरित कर देता है।
बाद में दिन में महायाजक खून से भरा बर्तन लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता। ऐसा 3 बार होता, कुछ खून बैल का था, कुछ बलि के बकरे का। बहुत डर और घबराहट के साथ महायाजक बाहरी पर्दे से होकर पवित्र स्थान में प्रवेश करता। पुजारी और उपासक उत्सुकता से देखते हैं, क्योंकि यह महायाजक को आखिरी बार देखने वाला था, जब तक कि वह फिर से प्रकट नहीं हो जाता, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने लोगों के लिए बलिदान स्वीकार कर लिया है, या महायाजक कभी बाहर नहीं आया, जिसका अर्थ है कि वह मारा गया था। प्रभु ने बलिदान को अस्वीकार कर दिया था और अब लोगों को अगले साल इसी समय तक अपने पाप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परोक्षित वह पर्दा जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था, महायाजक द्वारा सावधानी से वापस मोड़ा गया और उसके सामने वाचा का संदूक खड़ा था, जिसके ढक्कन से करूब के मुरे हुए पंख बाहर निकल रहे थे, जो दया का आसन था। फिर महायाजक ने सोने के बर्तन से खून लिया और उसे दया के आसन पर और संदूक के सामने छिड़का, जिससे वह स्थान शुद्ध हो गया। अपनी उंगली का उपयोग करते हुए महायाजक ने रक्त को संदूक की ओर छिड़का, एक बार ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। उसने ऊपर और नीचे का यह चक्र ठीक 7 बार दोहराया, यहां तक कि सुनिश्चित करने के लिए उसने जोर से गिनती भी की, एक बार ज्यादा या एक बार कम, और अनुष्ठान बर्बाद हो गया। हालांकि मेरे पास विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन इस दौरान परोक्षित और पवित्र स्थान बाहरी कक्ष की साज सज्जा भी खून से साफ की गई। इस प्रकार दिन के अंत में परमेश्वर का पवित्र स्थान मंदिर एक बार फिर अशुद्धता से शुद्ध हो गया और परमेश्वर के रहने के लिए उपयुक्त हो गया। फिर भी न तो आम उपासक और न ही नियमित पुजारियों को उच्च पुजारी को पवित्र स्थान के अंधेरे घेरे में अपना कार्य करते हुए देखने का विशेष अधिकार था। अब हालांकि बलि का बकरा अनुष्ठान के दूसरे भाग का समय था, जिसके तहत उच्च पुजारी बकरे के सींगों के बीच एक लाल कपड़ा बांधता था, बकरे को लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से पेश करता था और फिर मंदिर के प्रांगण में बकरे के सिर पर अपने हाथ रखता था, जो कि इसराइल के लिए वर्तमान मध्यस्थ होता था, जिससे इसराइल के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। बलि के बकरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उच्च पुजारी कहता था, हे यहोवा, उन्होंने अधर्म किया है, उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने पाप किया है, तेरी प्रजा इसराइल का घराना। ओह फिर यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, उनके अधर्म, उनके अपराध और उनके पापों को जो उन्होंने दुष्टता से किए हैं, अपराध किए हैं और तेरे सामने पाप किए हैं, तेरी प्रजा इसराइल का घराना, जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, उस दिन यह तुम्हारे लिए ढांप दिया जाएगा कि तुम यहोवा के सामने अपने सब पापों से शुद्ध हो जाओ और तुम शुद्ध हो जाओगे। अब निर्दोष बकरी, जो अब इसराइल के सभी पापों से बोझिल थी, को पूर्वी द्वार से मेहराबदार पुल के ऊपर किद्रोन घाटी के पार जैतून के पहाड़ पर ले जाया गया। वहां से एक निर्दिष्ट व्यक्ति बकरी को यरूशलेम के दक्षिण में स्थित रेगिस्तानी जंगल में ले जाता था। यह सबसे दिलचस्प है कि हालांकि शास्त्रों में ऐसा करने का आदेश नहीं है, परंपरा विकसित हुई कि एक गैर यहूदी, यदि आप कल्पना कर सकते हैं, बकरी को जंगल में एक चट्टानी खाई में ले जाता था और वहां बकरी को उसके किनारे पर ले जाता था और उसे धक्का देकर मार देता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बकरी, जिस पर इसराइल का पाप था, लोगों को परेशान करने के लिए कभी वापस ना आए। मुझे इसे जल्दी ही समाप्त करना है, इसलिए मुझे इसे संक्षेप में बताने की अनुमति दें, जबकि मैं जरूरी नहीं कि योम किप्पुर के बारे में विकसित परंपराओं के साथ बहस कर रहा हूं, हम उनमें अच्छे और बुरे दोनों प्रतीक देख सकते हैं। कहीं भी शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि बलि का बकरा, जिसे जंगल में चट्टान से नीचे धकेलने या मारने के लिए छोड़ दिया गया था, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी को भी गैर यहूदी को छोड़कर उस बकरे का नेतृत्व करना था। कहीं भी शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि योम किप्पुर का उद्देश्य यह देखना है कि क्या किसी व्यक्ति का नाम साल दर साल दिव्य जीवन की पुस्तक में लिखा जा सकता है या नहीं। और निश्चित रूप से ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है कि योम किप्पुर या बाइबल के किसी भी पर्व को पवित्र मंदिर और पुरोहिती के अस्तित्व के बिना ठीक से और पूरी तरह से आयोजित किया जाए। इसलिए आज किसी के लिए किसी दूसरे को यह आंकना कि वे बाइबल के पर्वों को कैसे मनाते हैं और दूसरों पर इस मामले में ठीक से तोरह का पालन न करने का आरोप लगाना बेईमानी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें वह नहीं करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मंदिर और मंदिर के पुरोहित वर्ग को परमेश्वर के नियुक्त समय का पालन करने के लिए, जो करने के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त किया गया है, उसके अलावा अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक मैं देख रहा हूं कि ईसाई धर्म ने परमेश्वर के नियुक्त समय को त्याग दिया है और हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो इन अनुष्ठानों को पुनः स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह जानना बहुत परेशान करने वाला है कि मंदिर के अस्तित्व में आने के लगभग 500 वर्षों के बाद भी योम किप्पुर अनुष्ठान ठीक से नहीं किया गया। मैं यह निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं? क्योंकि बेबीलोन के निर्वासन के बाद से वाचा का संदूक गायब हो गया था। प्रायश्चित के दिन महायाजक वास्तव में एक पवित्रतम स्थान में जा रहा था जो खाली था, कोई संदूक नहीं, कोई दया का आसन नहीं, कोई ईश्वर की उपस्थिति नहीं। यह अच्छी तरह से दर्ज है कि महायाजक उन अंतिम 5 शताब्दियों के दौरान, जब मंदिर खड़ा था, वास्तव में उस खाली जगह पर फर्श पर खून छिड़कर रहा था जहां संदूक बैठा करता था। मैं इसके अलावा कोई और निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि इसराइल के लोगों ने 5 शताब्दियों तक एक मंडली के रूप में अपने अधर्म को नहीं छिपाया। जब यीशु आया तो उनके पास अवसर था, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया।
लेकिन यहां कुछ अच्छी खबर है। अपूर्ण महायाजक, पुरोहिताई,
मानव निर्मित पवित्र स्थान और बलिदानों को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा रूपांतरित और पूर्ण किया गया है जो पूर्ण है। पूर्ण व्यवस्था का अंततः पूर्ण रूप से पालन किया गया है। मसीहा यीशुआ पूर्ण मध्यस्थ है, वह पाप रहित महायाजक है जिसे कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ा। वह आदर्श निर्दोष बलिदान है जो हर ओर सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है। उसका बलिदान इतना पूर्ण और संपूर्ण है कि इसे केवल एक बार ही होना था, बार बार नहीं। फिर भी जिस तरह बलि के बकरे की रस्म में दो बकरों की जरूरत होती थी और एक को मार दिया जाता था और दूसरे को छोड़ दिया जाता था, उसी तरह यीशु ने अपने आगमन पर योम किप्पुर के कुछ उद्देश्य पूरे किए हैं और अपने दूसरे और भविष्य के आगमन पर बाकी को पूरा करेंगे। वह बलि का बकरा बन गया जिसने 2000 साल पहले अपने सभी भक्तों के लिए एक बार प्रायश्चित किया था, लेकिन अभी तक पूरे इसराइल को बचाया नहीं गया है। और जैसा कि हमें यीशु ने सीधे तौर पर बताया है और जैसा कि रोमियो 11 में संत पौलुस ने समझाया था, यीशु की प्राथमिकता इसराइल थी। अपनी जल्द वापसी में वह इसराइल को उसके सांसारिक और आध्यात्मिक शत्रुओं से बचाएगा और उन्हें परमेश्वर के साथ शांति में लाएगा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 7 बाइबल पर्व पूरी तरह से मसीहा के छुटकारे के कार्य की ओर इशारा करते हैं। मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि वे उसी मौसम में होंगे जिस मौसम में उन्हें मनाया जाना तय किया गया था। वसंत और ग्रीष्म उत्सव पहले 4 पहले ही पूरे हो चुके हैं। हम 3 पतझड़ त्योहारों की पूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, रोश हशनाह, योम किप्पुर और सुकोट। आइए लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 पर चलते हैं। लेव्य व्यवस्था 17 कई सवालों के जवाब देने जा रहा है और बाइबल के बाकी हिस्सों में जो कुछ होने जा रहा है उसके लिए मंच तैयार करेगा। हम अध्याय 17 में कई बुनियादी अवधारणाओं को पेश करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे आपको जो मिलेगा वह आपके सामान्य बाइबल अध्ययन में आपकी बहुत मदद करेगा। यह अध्याय और उसके बाद के 9 अध्याय मिलकर वह बनाते हैं जिसे विद्वान अब पवित्रता संहिता कहते हैं। और सामान्य विचार यह है कि पूरे इसराइल राष्ट्र की यह जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों से अलग किए जाने और उन्हें आशीर्वाद दिए जाने के प्रति प्रतिक्रिया दें। अपेक्षित प्रतिक्रिया यह थी कि वे अपने जीवन को पवित्र तरीके से जी। अध्याय 19 पद 2 में हम इसराइल राष्ट्र को यह चेतावनी पाते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। जबकि हम कह सकते हैं कि इस बिंदु तक लेव्य व्यवस्था का अधिकांश भाग मुख्य रूप से नव स्थापित पुरोहित वर्ग को निर्देशित किया गया है, ये अध्याय आम इजरायली समाज के हर स्तर को संबोधित करते हैं, यहां तक कि विदेशियों गैर इसराइलियों को भी जो उनके बीच रहते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ईसाइयों के रूप में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने योम किप्पुर के बारे में पिछले अध्याय में देखा था, ये केवल याकूब के भौतिक वंशावली वंशज ही नहीं थे जो खुद को मूसा के नियमों की आवश्यकताओं, आशीर्वादों और श्रापों के अधीन पाते थे, बल्कि वे भी थे जो इसराइल के बीच रहते थे। आइए स्पष्ट करें कि हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि लेव्य व्यवस्था की समय सीमा मिस्र छोड़ने के लगभग 1 वर्ष बाद की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके साथ पहले से ही विदेशी लोग रह रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या रेगिस्तान में तंबुओं में रहने, दिन में 3 बार मन्ना खाने, ये बिल्कुल भी पता न होने के कारण कि यह सब कैसे होने वाला है उन लोगों को अभिभूत कर दिया जिन्होंने इसके बारे में सुना और इसलिए वे लाभ उठाने के लिए झुंड में आ गए। शायद ही अगर आपको याद हो तो निर्गमन 12 का 38 में हमें बताया गया है कि लोगों की एक मिश्रित भीड़ मिस्र से इसराइल के साथ चली। अब मुझे नहीं पता कि भीड़ में कितने लोग शामिल हैं, लेकिन शब्द से ही पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण संख्या थी। और परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि परमेश्वर के कई नियम और आदेश विशेष रूप से मिस्र से आए इन विदेशियों को संबोधित करते हैं जो किसी न किसी स्तर पर इसराइल में शामिल हो गए हैं,
इनमें से सभी विदेशी आधिकारिक रूप से इजरायली नहीं बने। कुछ लोगों के पास मूसा की भीड़ में शामिल होने के लिए इजरायली बनने के अलावा अन्य कारण भी थे। मुझे संदेह है कि उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिस्र के परिवारों और इब्रानी परिवारों के बीच अंतरजातीय विवाह का प्रतिनिधित्व करता था। आखिरकार हमें बाइबल में बताया गया है कि जबकि अधिकांश इसराइल मिस्र के गोशेन की भूमि में रहते थे, बहुत से इब्रानी मिस्र के अन्य क्षेत्रों में चले गए थे। क्योंकि उनका मिस्र में रहना बहुत लंबा 4 शताब्दियों था, इसलिए याकूब के वंशजों की एक महत्वपूर्ण संख्या के पारंपरिक मिस्र के समाज में आत्मसात होने की कल्पना करना काफी आसान है।
मिस्र के लोगों और संभवतः कई सेमिटिक, अर्थात वे जो नूह के बेटे शेम से आए थे, सहित अन्य लोग और जनजातियां, लेकिन गैर इब्रानी लोग और जनजातियां जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसराइल के परमेश्वर के भयानक क्रोध और शक्ति को देखा और उससे बच गए, ने फैसला किया कि वे एक ऐसे समूह का हिस्सा होने का लाभ उठाना चाहते हैं जिसका परमेश्वर मौसम, पशु साम्राज्य, नील नदी, यहां तक कि मृत्यु पर भी इतना प्रभुत्व रखता है। इसलिए जब हम जंगल में शरणार्थियों के इस विशाल समूह की कल्पना करते हैं तो हमें उस समूह में पर्याप्त मात्रा में गैर इब्रानी विदेशी को शामिल करना होगा।
इस तथ्य का हमारे समय में सीधा अनुवाद है। मैंने इस सिद्धांत को बार बार प्रदर्शित किया है और जब तक पूरा चर्च यह नहीं समझ लेता तब तक ऐसा करना बंद नहीं करूंगा। हम में से जो लोग शारीरिक रूप से गैर यहूदी हैं, उन्हें बचाने के लिए जो चीज सक्षम बनाती है वह यह है कि हमें ईश्वर द्वारा इसराइल के साथ किए गए अनुबंधों से लाभ मिलता है। और हम उस लाभ को कैसे अपना सकते हैं जो जन्म से हमारा नहीं है, इसराइल में शामिल होकर? क्या यह यीशु मसीह को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से अलग कार्य है? नहीं, यह तब होता है, हालांकि हम इसके बारे में नहीं जानते, जब हम मुक्ति पाते हैं। जब गैर यहूदियों को छुड़ाया जाता है तो हम इसराइल से जुड़ जाते हैं, या अधिक सटीक रूप से इसराइल की वाचाओं से। हम शारीरिक रूप से नस्लीय यहूदियों में नहीं बदल जाते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक स्तर पर इसराइल से जुड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम यीशु के साथ एकता में लाए जाते हैं। हम मसीहा से शारीरिक रूप से नहीं जुड़े हैं, है ना, बल्कि हम आत्मा में या आत्मा के माध्यम से उससे जुड़ते हैं। जिस तरह से वे विदेशी, गैर इब्रानी, गैर यहूदियों की मिश्रित भीड़ जो मिस्र छोड़ने पर इसराइल के साथ चले गए थे, उन्हें लाभ हुआ और इसराइल के परमेश्वर द्वारा उनके इब्रानी मित्रों के साथ आशीर्वाद दिया गया, वैसा ही आज गैर यहूदी विश्वासियों के साथ भी है। आप तोरह में पाएंगे कि ऐसा नहीं था कि उन विदेशियों को अपनी सभी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग कर और इब्रानी संस्कृति को अपनाकर इसराइल में शामिल होना था, बल्कि उन्हें इब्रानी परमेश्वर और इसराइली अधिकार के अधीन होना था। उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी, ठीक है हम एदोमी थे, लेकिन आज हम अपनी विरासत को पूरी तरह से त्याग देते हैं और इब्रानी बन जाते हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर गैर यहूदी विश्वासियों को इसराइल और ईश्वर के साथ उनकी वाचाओं में शामिल नहीं किया जाता है, तो वास्तव में तोरह और पुराना नियम पुनर्जन्म लेने वाले विश्वासियों के लिए महत्वहीन और अप्रासंगिक है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि नया नियम भी अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि नए नियम का पूरा विषय पुराने नियम की आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों की पूर्ति है।
अपनी बाइबल में रोमियों 11 का 13 खोलिए। संत पौलुस गैर यहूदियों से बात कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह गैर यहूदियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वह ऐसा कहते हैं। रोमियों 11 13 से 31 पर हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हम इसराइल और इसराइल की वाचाओं में शामिल हैं। इसराइल का हिस्सा होना परिभाषा के अनुसार उनकी वाचाओं का हिस्सा होना है। आप वाचाओं से अलग इसराइल का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि इसराइल को इसराइल बनाने वाली चीज यहोवा के साथ वाचाएं हैं। इसलिए हम तोरह में जो PRH रहे हैं उसका उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्व है जो मसीहा यीशुआ के शिष्य होने का दावा करते हैं। ऐसा होने के कारण मैं यह भी सोचता हूं कि हम कुछ तरीकों से तोरह को अपने जीवन में थोड़ा और जीवंत बना सकते हैं, इसे और अधिक व्यक्तिगत और वास्तविक बना सकते हैं। अगर हम खुद को उन विदेशियों की भूमिका में डाल सकें जो मिस्र छोड़कर अब इसराइल के साथ अपने तंबुओं में रह रहे थे, इससे भी अधिक मसीह में हमारी स्थिति के परिणाम स्वरूप हम वे विदेशी हैं जो इसराइल के पूर्ण नागरिक हैं। हमें अपनी गैर यहूदी पहचान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें नस्लीय या शारीरिक या राष्ट्रीय या धार्मिक यहूदी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उनकी वाचाओं की शर्तों के भीतर रहना आवश्यक है, क्योंकि केवल उनकी वाचाओं के भीतर ही प्रायश्चित का आधार मौजूद है, जिसे मसीह उन सभी को प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करेंगे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 पूरा ए पर है।
जैसा कि हम पद 2 में देखते हैं, आगे जो होने वाला है वह पूरे इसराइल को संबोधित है, इसराइली समाज के हर स्तर को। और पद 3 में हमें यह आधारभूत निर्देश मिलता है। मुझे इसे संक्षेप में कहने की अनुमति दें, किसी भी पालतू जीवित प्राणी पशु को तंबू के प्रांगण के बाहर अनुष्ठान पूर्वक वध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह नियम पालतू जानवरों के बारे में है, जंगली जानवरों के बारे में नहीं। और अगर आप ध्यान दें तो जिन जानवरों का उल्लेख किया गया है वे शुद्ध जानवर हैं, जिन्हें बलि और भोजन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मांस के विषय की बात आती है तो परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मांस पर समान प्रतिबंध होते हैं। हमने जो अभी पढ़ा है उसे महत्वहीन न बनाए, क्योंकि यह न केवल पवित्रता से संबंधित निर्देश है बल्कि इसका जबरदस्त सामाजिक प्रभाव भी है, क्योंकि अनिवार्य रूप से सभी पालतू जानवर जिन्हें मांस के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें पहले बलि के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। यह वादा किए गए देश में प्रवेश करने पर बदल जाएगा। उन्हें अनुष्ठान पूर्वक वध किया जाना चाहिए और प्रत्येक सावधानी से निर्मित लेवी बलिदान के अनुसार सटीक तरीके से परमेश्वर को चढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि औसत इसराइली या उनके बीच रहने वाले विदेशी के लिए मांस एक दुर्लभ उपहार था और उन्हें मारे गए प्रत्येक जानवर का केवल एक हिस्सा रखने को मिलता था। शेष को वेदी पर जला दिया जाता था और कुछ मामलों में जो जलाया नहीं जाता था उसे पुजारियों को उनके हिस्से के रूप में दिया जाता था। इससे न केवल मांस खाना महंगा हो गया बल्कि यह शाही दर्द भी बन गया, क्योंकि हर बार जब कोई परिवार मांस चाहता था तो उन्हें जानवर को तंबू में ले जाना पड़ता था और एक बहुत लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था ताकि पुजारी अनुष्ठान और जानवर के वध का कार्य कर सके। इसके अलावा जानवर को एक बेदाग सबसे अच्छे जानवरों में से एक होना चाहिए ताकि वह योग्य भी हो सके।
अब लेव्य व्यवस्था 17 जितनी छोटी है उसमें ऐसी बहुत सी बातें भरी पड़ी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह इस बारे में बहुत कुछ बताएगा कि उस समय इजरायली समाज कैसा था, और यह उन कई मुद्दों को भी समझाएगा जिनका समाधान नया नियम में किया गया है। और इस तथ्य के अलावा कि पालतू जानवरों को हर परिस्थिति में तंबू में मारा जाना चाहिए और पहले बलि के लिए चढ़ाया जाना चाहिए, हम यह भी देखते हैं कि उन इसराइलियों के लिए दंड के रूप में क्या होता है जो परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के लोगों के बीच से काट दिया जाएगा।
पद 3 में ध्यान दें कि यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति केवल जानवर को शिविर के बाहर ले जाकर उसे मारने के प्रावधान से बच नहीं सकता। यह ऐसा कुछ नहीं है जो केवल इसराइल के परिसर के भीतर पवित्रता की स्थिति बनाए रखने के बारे में है, लेकिन इससे भी अधिक परमेश्वर की नजर में इस अवज्ञा की गंभीरता का स्तर पद 4 में विस्तृत है। वहां यह कहा गया है कि खून या खून दोष उस व्यक्ति पर आरोपित किया जाएगा जो केवल भोजन के लिए जानवर को मारने जैसा काम करता है। तो इसका क्या मतलब है, खून या खून का दोष? इसका मतलब है कि अपराध हत्या के बराबर है। अरे हम एक मिनट में उस पर वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए आइए कट ऑफ शब्द को देखें और देखें कि बाइबल के समय में इसका क्या मतलब था। कट ऑफ का मतलब है
कि यह समझा जाता है कि किसी ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है और परिणाम स्वरूप ईश्वर का न्याय उस व्यक्ति पर आने वाला है। हालांकि हम शास्त्रों में कई अलग अलग संदर्भों और परिस्थितियों में कट ऑफ शब्द का इस्तेमाल पाते हैं और प्रत्येक का थोड़ा अलग अर्थ होता है। एक बात यह है कि ईश्वर की आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करने के लिए कट ऑफ होना जरूरी नहीं है कि तुरंत हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके विद्रोह के कृत्य के लिए ईश्वर के न्याय के रूप में समय आने पर आपके साथ कुछ होने वाला है, इसलिए आप इस वाक्य को अपने सिर पर लटकाए हुए घूमते रहते हैं, अक्सर सालों साल तक। आप जानते हैं कि यह आ रहा है, कुछ बुरा, लेकिन आप नहीं जानते कि क्या, और आप नहीं जानते कि कब, और आप नहीं जानते कि कैसे। यह ईश्वर के समय और ईश्वर के तरीके से होगा।
सजा में अपराधी की शारीरिक मृत्यु शामिल नहीं है, या कम से कम उसकी तत्काल मृत्यु। पुराने नियम में अक्सर कट ऑफ का मतलब होता था कि व्यक्ति अपना जीवन काल नहीं जी पाएगा, और चूंकि उन दिनों मरने और स्वर्ग जाने की कोई अवधारणा नहीं थी, वास्तव में भजन और इस मामले पर अधिकांश पुराने नियम की चर्चाएं केवल अधोलोक कब्र में जाने की बात करती हैं, जो कि मनुष्य के अस्तित्व का स्वाभाविक अंत है। इसराइलियों को जो उम्मीद थी वह एक परिपक्व वृद्धावस्था में मरने की थी। कट ऑफ होने का मतलब आम तौर पर आपका जीवन छोटा हो जाना था। कट ऑफ होने का यह विशेष पहलू नियमित रूप से दुष्टों के लिए निर्धारित किया गया था। अलग थलग होने का मतलब कभी कभी इसराइल के समुदाय से निष्कासित होना हो सकता है, आधुनिक धार्मिक शब्दों में बहिष्कार। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह आपके पूर्वजों से हमेशा के लिए अलग हो जाने का भाव भी रखता है। अब जब जीवन के बाद का जीवन बहुत ही अस्पष्ट और अनिर्धारित चीज थी, तो उनके लिए इसका क्या मतलब था यह बताना मुश्किल है। लेकिन इसका जो भी मतलब हो, यह अच्छी बात नहीं थी, यह पक्का है।
रब्बी साहित्य में कट ऑफ के लिए इब्रानी शब्द कैरेट है, और कैरेट में स्वर्ग के हाथों मृत्यु की अवधारणा है। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे ईश्वरीय दंड के रूप में देखा गया। और दंड जरूरी नहीं कि उल्लंघनकर्ता की मृत्यु के साथ समाप्त हो, न ही उसे सीधे प्रभावित करे। इसके बजाय इसे किसी के वंशजों में ले जाया जा सकता है, जैसे कि उसके बच्चों में से किसी एक की मृत्यु हो जाना। इसलिए वह विचार जिसके बारे में हम सभी ने बाइबल में सुना है कि पिता के पापों का परिणाम तीसरी और चौथी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, कैरेट के क्रियान्वयन का एक विस्तार और उदाहरण है। कैरेट कट ऑफ होना का अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी की वंशावली पूरी तरह से समाप्त हो सकती है, शायद मृत्यु से भी बदतर सजा, क्योंकि यह धारणा थी कि वास्तव में आपका सार, आपकी आत्मा आपके वंशजों में जीवित रहती है। इसलिए यदि आपके कोई वंशज नहीं है, तो आपको मृत्यु के बाद जीवन पाने की कोई उम्मीद नहीं है। आइए एक मिनट के लिए विषय से हटकर रक्त या रक्त अपराध के बारे में बात करें। इब्रानी में यह मुहावरा है, शफाख डैम शफाख, बहाना बांध खून। इसलिए शाब्दिक रूप से रक्त के अपराध का अर्थ है खून बहाना। यहां लैव्य व्यवस्था में यह पालतू जानवरों की अनुचित और गैर अनुमोदित हत्या के इर्द गिर्द घूमता है। आम तौर पर यह हत्या का पर्याय है, किसी इंसान की अनुचित हत्या।
उत्पत्ति 9 में हम पाते हैं कि नूह को भोजन के लिए जीवित प्राणियों को मारने की अनुमति दी गई है, बाइबल में पहली बार। आइए उस आयत पर एक नजर डालें, क्योंकि यह विशेष रूप से कुछ सवालों के जवाब देता है जिनके बारे में अक्सर यह मान लिया जाता है कि उनका उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन शायद पवित्र शास्त्र में केवल संकेत दिया गया है।
उत्पत्ति 9 का एक और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। 2, और तुम्हारा भय और आतंक पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों पर बना रहेगा, और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतु और समुद्र की सब मछलियां वे सब तुम्हारे हाथ में कर दी जाएंगी। 3, सब चलने वाले जंतु जो जीवित हैं तुम्हारा आहार होंगे। जैसा मैंने हरे पौधे दिए हैं वैसा ही मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। 4, परंतु तुम मांस को उसके प्राण समेत अर्थात लोहू समेत न खाना। 5 और मैं निश्चय तुम्हारे लोहू का लेखा लूंगा, सब पशु से लूंगा, और हर मनुष्य से, हर मनुष्य के भाई से मैं मनुष्य का प्राण लूंगा। 6 जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो पृथ्वी के जानवर मनुष्यों से क्यों डरेंगे? क्योंकि उन्हें अपनी प्रजाति के संरक्षण के लिए मनुष्यों के प्रति सहज भय की आवश्यकता थी। जाहिर है कि जल प्रलय से पहले जानवरों में मनुष्य का डर बहुत कम था, अगर था भी। एक फुटनोट के रूप में यह बताता है कि नूह को उन सभी जानवरों को अपने जहाज में लाने के लिए पाइड पाइपर बनने की जरूरत क्यों नहीं थी। बहुत कम लोगों को, अगर था भी, मनुष्यों का डर था। परमेश्वर ने उन्हें बनाते समय उनमें सहज भय नहीं डाला था। आखिरकार दुनिया के इतिहास में पहली बार जल प्रलय के बाद यहोवा ने मनुष्य को अन्य जीवित प्राणियों को खाने की अनुमति दी थी, जिसका मतलब है कि जाहिर है अब मनुष्य के पास अन्य जीवित प्राणियों को मारने का अधिकार था, जबकि पहले उसके पास यह अधिकार नहीं था। अब तक जैसा कि उत्पत्ति 9:3 में बताया गया है, यह हरे पौधे थे जो मनुष्य के आधिकारिक भोजन स्रोत थे। जितना यह सोचकर मुझे निराशा होती है, मनुष्य को स्पष्ट रूप से शाकाहारी होने के लिए बनाया गया था।
अब एक और बात, उत्पत्ति 9:5 में कहा गया है कि मैं हर जानवर से इसकी मांग करूंगा, यानी परमेश्वर उस जानवर की जान की मांग करेगा, क्योंकि वह दूसरे जानवरों को मार देगा जिनमें खून है। हम यह भी देखते हैं कि जाहिर तौर पर जानवर भी इंसानों की तरह ही महाप्रलय तक शाकाहारी थे, इसलिए परमेश्वर ने उन जानवरों पर कोई जादू नहीं किया जो उन सभी महीनों में जहाज में बंद थे, जिससे वे नूह या उसके परिवार या यहां तक कि एक दूसरे को मारना या खाना नहीं चाहते थे। उनके पास ऐसा करने की कोई सहज प्रवृत्ति नहीं थी, और जाहिर तौर पर मांस के लिए कोई स्वाद नहीं था।
मैं यहां बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं, क्या खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं? इसकी समय सीमा कुछ इस तरह दिखती है, आदम और हव्वा से शुरू होकर नूह और महाप्रलय तक जानवरों को भोजन के लिए नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन जानवरों, संभवतः स्वच्छ पालतू जानवरों को बलि के लिए मारा जाता था, और यह उचित प्रतीत होता है कि उन जानवरों की खालों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कपड़ों के रूप में और शायद टेंट और तरल पदार्थ रखने के लिए किया जाता था। जल प्रलय तक पुरुषों को शाकाहारी होना चाहिए था। क्या कुछ पुरुषों ने, शायद कई लोगों ने, उस निर्देश का उल्लंघन किया? बहुत संभव है।
जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार, जो पृथ्वी पर बचे हुए एकमात्र लोग थे, को निर्देश दिया कि वे जानवरों को मार सकते हैं और उनका मांस खा सकते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, और बाइबल में भी ऐसा नहीं बताया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि वे जितने भी जानवरों को खा सकते थे उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। दूसरे शब्दों में, भोजन के लिए जानवरों के चयन के मामले में शुद्ध या अशुद्ध का कोई उल्लेख नहीं था। फिर भी यह हो सकता है कि यह समझा गया था कि मनुष्य को केवल वही चीजें खानी थीं जो बलि के लिए उपयुक्त थीं, और निश्चित रूप से परमेश्वर ने बलि के लिए जानवरों को पहले से ही शुद्ध और अशुद्ध में वर्गीकृत किया था। लेकिन मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि मनुष्य ने भोजन के रूप में मांस पर कोई प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य महाप्रलय के तुरंत बाद से ही किसी भी जीवित प्राणी को खा सकता था, और यह तब तक प्रभावी था जब तक कि परमेश्वर ने मूसा को माउंट सिनाई पर तोरह नहीं दिया, महाप्रलय के लगभग 1200 साल या उससे ज्यादा बाद। फिर माउंट सिनाई पर परमेश्वर ने जीवित प्राणियों के खाने के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए, और उन्हें मनुष्यों के लिए स्वच्छ, स्वीकार्य और अशुद्ध, अस्वीकार्य खाद्य पदार्थों में विभाजित किया। आइए हम यहीं रुकें और अगली बार फिर रक्त के मामले पर चर्चा करेंगे।